मेरे नौजवान दोस्तों नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मुख्य विषय के अंतर्गत मैं आप सबसे यूक्रेन संकट के बारे में कुछ बहुत ही मूलभूत, जिसे आप फाउंडेशन कह सकते हैं, उस तरह की बातें करूंगा। लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी खबरों को, घटनाओं को देख लेते हैं। एक बात मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, कल गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणराज्य को लेकर मैंने एक आर्टिकल लिखा है और यह आर्टिकल आज के दैनिक जागरण में प्रकाशित हुआ है। उसके अंदर का एक पेज होता है अंतस एवं आध्यात्मिकता का, उसके तहत यह लेख प्रकाशित हुआ है। मैं चाहूंगा कि आप इस लेख को पढ़ें। ये आपको हम लोग भी अपने प्रेस क्लिपिंग्स के तहत प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आप वहां से नहीं पढ़ पा रहे होंगे तो यहां से भी आप पढ़ सकते हैं। खासकर मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूं कि क्योंकि मैंने लिखा है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि गणराज्य को मैंने थोड़े से अलग तरीके से देखने की कोशिश की है। हो सकता है कि आपको इसमें कुछ ऐसे तत्व मिले जिनका इस्तेमाल आप अपने पॉलिटिकल साइंस के आंसर में कर सकें, और अगर वहां नहीं कर सके तो आप हो सकता है कि एथिक्स के पेपर में कर लें या फिर निबंध लिखने में भी इसका उपयोग कर लें। और मुझे लगता है खासकर निबंध लिखने में इसका काफी कुछ उपयोग किया जा सकता है, तो थोड़ा सा आप उसे ध्यान से पढ़ने के लिए वक्त निकालें। कल मैं आप सबसे डेपुटेशन के बारे में बात कर रहा था कि ऑल इंडिया सर्विसेज के जो ऑफिसर्स होते हैं केंद्र में डेपुटेशन पर बुलाए जाते हैं। हो अभी ये रहा है दोस्तों कि जब डेपुटेशन के लिए राज्यों के ऑफिसर्स अप्लाई करते हैं तो राज्य उन्हें इसकी अनुमति नहीं दे रहे हैं, अगर दे भी रहे हैं तो संख्या में बहुत कम दे रहे हैं। इसका परिणाम यह हो रहा है कि केंद्र में ऑफिसर्स की, ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर्स की कमी होती जा रही है। इस सिचुएशन को देखते हुए अब केंद्र ने राज्यों से भी इसके बारे में सलाह मांगी है कि वो कानून में बदलाव करने जा रही है कि केंद्र जब किसी भी राज्य से किसी भी ऑफिसर्स की डिमांड करेगा, याद रखिए ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर्स की डिमांड करेगा, तो राज्य उसे भेजने के लिए बाध्य होंगे। मुझे नहीं लगता कि राज्य इसे आसानी से स्वीकार करेंगे, और आप देख रहे हैं कि इस पर एडिटोरियल कमेंट्स भी आने शुरू हो गए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने तो आज इस पर एक काफी बड़ा आर्टिकल भी लिखा है। ऐसा क्यों, आइए हम थोड़ा सा इसे देख लेते हैं। आप जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्वरूप है वो फेडरल टाइप का स्वरूप है ना, राज्यों के अपने अधिकार हैं, केंद्र के अपने अधिकार हैं, और उसी के आधार पर तीन सूचियां बनाई हुई हैं। केंद्र सरकार से संबंधित सूची उन विषयों पर कानून बनाएगी, राज्य सरकारें अपने विषयों पर कानून बनाएंगी, और एक समवर्ती सूची होती है। यह हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, और इसको कैसे आगे बढ़ाया जा सके इसके लिए फिर अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। और फेडरल स्ट्रक्चर जो हमारा है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर आपकी बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए, बहुत अच्छी समझ दोस्तों। तो अब हो क्या रहा है कि जो स्टेट हैं उनका अपना प्रशासन है, उनके अपने गृह मंत्री होते हैं, अपने ढंग से उन्हें अपने स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर देखना होता है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर देखने के जो सर्वोच्च दो अधिकारी होते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और दूसरा एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर्स होते हैं। ये यूपीएससी के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार इन्हें अपॉइंट करके भेजती है। ठीक है, मसूरी वगैरह में ट्रेनिंग हो गई, फिर राज्यों में ट्रेनिंग हो जाती है, राज्य अपने ढंग से उन्हें ट्रेंड करते हैं, लेकिन इनका जो नियंत्रण होता है ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर्स का, वो केंद्र सरकार के हाथों में होता है। हालांकि राज्यों के हाथ में भी, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से केंद्र सरकार के हाथ में होता है, लेकिन काफी कुछ केंद्र के हाथ में होता है। मतलब अगर राज्य सरकार अपने ऑफिसर्स के ऊपर कोई आरोप लगा करके सस्पेंड करे, नौकरी से निकालना चाहे, तो उसके लिए आसान नहीं होगा कि राज्य ऐसा कर लें, है ना। उसकी बकायदे प्रक्रिया है और उसमें उसे केंद्र को भी शामिल करना पड़ता है। अब आप पाएंगे कि यहां थोड़ा सा फेडरल स्ट्रक्चर पर आघात हो रहा है कि जिम्मेदारी सारी राज्य सरकारों की है, लेकिन ऐसा पूरी तरह से वो अपने ही अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं रख सकते। इसीलिए बहुत से राज्य बीच बीच में इस तरह की मांगे करते हैं कि नहीं, हमको ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर्स नहीं चाहिए। अगर इसे बंद कर दिया जाए कि ठीक है ऑफिसर्स नहीं चाहिए, तो फिर आप करेंगे क्या? स्टेट का कहना है कि हम अपनी रिक्रूटमेंट कर लेंगे, हमारे यहां भी आयोग है, पब्लिक सर्विस कमीशन है, और आप जानते हैं कि स्टेट लेवल पर भी बकायदे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के रिक्रूटमेंट्स होते हैं, पुलिस ऑफिसर्स के रिक्रूटमेंट होते हैं, जैसे डिप्टी कलेक्टर बनाए जाते हैं, डीवाईएसपी बनाए जाते हैं, और अलग अलग राज्यों में कुछ सालों के बाद इन्हें आईएएस और आईपीएस अवार्ड भी कर किया जाता है, तो हम उनसे काम चला लेंगे। लेकिन दोस्तों, इसे कर पाना भी उतना आसान नहीं है। इसलिए अब देखते हैं कि ये जो एक विवाद की स्थिति बनी है इसका हल क्या निकल कर आता है। लेकिन आपको इस पर नजर रखनी चाहिए और जो आप नजर रखेंगे उसका जो बिंदु होगा वो फेडरल स्ट्रक्चर की, कैसे कहीं ऐसा तो नहीं कि राज्यों के अधिकार को धीरे धीरे लगातार कम करने की कोशिश की जा रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली ये थोड़ी सी आप यूं कह लीजिए कि चिंता की बात है। दोस्तों अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, यूक्रेन को लेकर के अब जो अमेरिका और खासकर रूस के बीच में तनाव बढ़ गया है इसके बहुत ही केंद्रीय बिंदु को आप ध्यान दीजिए। यानी बहुत विस्तार से आपको जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि यूक्रेन का संकट है लेकिन चूंकि अमेरिका और रूस के बीच तनाव है तो ये एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोगों को यह खतरा लगने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि विश्व युद्ध शुरू हो जाए। देखिए जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो सेकेंड वर्ल्ड वार में तो ये सब एक ही थे, अमेरिका रूस ये सब एक ही थे। लेकिन इससे पहले रूस में साम्यवादी सरकार की स्थापना हो गई थी, लेनिन के नेतृत्व में वहां कम्युनिस्ट मूवमेंट हुआ था, आंदोलन हुआ था, जार का शासन समाप्त कर दिया गया था। जार का शासन कहने का मतलब राजा का शासन समाप्त हो गया था और सर्वहारा सरकार में आ गई थी, लेनिन बने थे हेड, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आ गई। सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो गया। जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ तो अब हमारे सामने जो दुनिया थी उसमें दो भाग थे उसके, एक तो अमेरिका के नेतृत्व में कैपिटलिस्ट कंट्री यानी कि जो पूंजीवादी व्यवस्था को स्वीकार करती है और दूसरा रूस के नेतृत्व में साम्यवादी कंट्रीज जो आप यूं कह लीजिए कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट ही नहीं करती, दोनों बिल्कुल एक दूसरे के विरोधी। तो दोनों में खूब विवाद चलता रहा जिसे हम कोल्ड वार के नाम से जानते हैं, आपने सब लेक्चर्स में सुने होंगे। आगे चल करके क्या हुआ, 1990 के आसपास सोवियत संघ बिखर गया, उस समय उसका नाम होता था यूएसएसआर लेकिन अब उसका नाम हो गया रशिया। तो खासकर उस समय रशिया ने जो दूसरे देशों को भी अपने संघ में मिला लिया था, आप नाम सुनते होंगे कजाकिस्तान सुनते हैं ना, किर्गिस्तान, उसी में यूक्रेन भी शामिल है, तो ये सब पहले रूस के ही हिस्से थे। लेकिन जब 1991 में बिल्कुल बिखराव हुआ, 90-91 में बिखरना शुरू हुआ तो उसी दौर में यूक्रेन भी उससे आजाद हो गया, राइट, यूक्रेन रशिया से आजाद हो गया। यानी कि पहले वहां कम्युनिस्ट सरकार थी, रशिया के अंदर अगर है तो कम्युनिस्ट सरकार है, 1991 में वो देश अलग हो गया, ठीक है, और उसने अपने को घोषित कर दिया कि हम न्यूट्रल स्टेट हैं, मतलब ना हम अमेरिका की तरफ हैं और ना हम रशिया की तरफ हैं, क्लियर हो गया। और आप बॉर्डर देखिएगा, आप नक्शे पे जाके यूक्रेन को एक बार देख जरूर लीजिए कि ये कहां पर स्थित है, क्योंकि यूक्रेन का एरिया बहुत बड़ा, रशिया के बाद यूक्रेन दूसरा लार्जेस्ट कंट्री है यूरोप का, हालांकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है, 4 करोड़ के आसपास ही है लेकिन एक महत्वपूर्ण राष्ट्र है वो। तो जो ईस्ट यूरोप का जो हिस्सा है बेसिकली देखेंगे आप नक्शे में तो वो रशिया के बिल्कुल सटे हुए हिस्से में, तो वो सब के सब लगातार फिर कम्युनिस्ट भी होते चले गए, हालांकि वो रशिया के हिस्से नहीं थे लेकिन वहां कम्युनिस्ट सरकारें आती चली गई। संक्रामक रोग जैसा होता है तो वैसा होता चला गया, जिसमें आप पोलैंड को देखेंगे, हंगरी को देखेंगे, चेकोस्लोवाकिया को देखेंगे, ये सब देश थे तो ये कम्युनिस्ट कंट्रीज थे। लेकिन अब वहां भी अब आप जानते हैं कि खासकर 1990 के उदारीकरण के बाद से तो चीजें काफी कुछ बदल रही हैं। अब हम आते हैं सीधे सीधे 2013-14 के आसपास। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो यूक्रेन है उसने जो पश्चिम यूरोप के देश हैं उनके साथ अपने संबंध बेहतर करने शुरू किए, उनके साथ एग्रीमेंट भी किया। लेकिन 2013 के आसपास यूक्रेन में जो राष्ट्रपति थे उन्होंने यूरोप के साथ किए गए एग्रीमेंट को खत्म कर दिया। जब मैं कह रहा हूं यूरोप के साथ तो इसका मतलब है कि वेस्टर्न यूरोप जिसमें ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है ना, ये वेस्टर्न यूरोप में आते हैं। नक्शे में आप देखेंगे तो वेस्ट और ईस्ट यूरोप आपको साफ सा अलग अलग नजर आ जाएगा। तो दोस्तों वहां फिर आंदोलन होने शुरू हो गए इसके विरोध में कि राष्ट्रपति ये क्या क्या कर रहे हैं, क्योंकि जो यूक्रेन था, जो आजाद यूक्रेन था, वो उसका जो झुकाव था वो पश्चिम यूरोप की तरफ था, क्योंकि पूर्वी यूरोप में देख चुके थे वो नहीं चाहते थे कि उनके यहां कम्युनिस्ट सरकार फिर से आए, कम्युनिस्ट प्रभाव फिर से आए, क्योंकि उसकी अपनी सीमाएं हैं। और बकायदे इस बीच में यूक्रेन ये चाहने लगा कि जो नाटो है वो उसका सदस्य बने। जब मैं नाटो कह रहा हूं दोस्तों तो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। ये खासकर जो यूरोप के कुछ देश हैं, 27 देश हैं, हालांकि इसमें अमेरिका और कनाडा भी हैं, बाद एक यूरेशियन कंट्री भी है, तो टोटल लगभग लगभग 30 देश हैं, उनका एक संगठन है और ये मिलिट्री संगठन है। खासकर सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद फिर जब दुनिया दो भागों में बट गई, कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट, तो इन्होंने अपने अपने सैन्य संगठन भी बनाए, अपने अपने लोगों को जोड़ा कि भैया एक दूसरे पर जब अटैक होगा तो हम सहयोग करेंगे। तो नाटो संगठन आप यूं कह लीजिए कि अमेरिका के नेतृत्व में बना, और वारसा संधि जो हुई वो रशिया के नेतृत्व में बनी। आजाद होने के बाद यूक्रेन अब नाटो का मेंबर बनना चाह रहा है। अब देखिए कि संकट कहां से शुरू हुआ, नाटो का मेंबर बनना चाह रहा है, यूक्रेन की यह भावना है। राष्ट्रपति ने यूरोप के साथ जो संधि थी, उस एग्रीमेंट था, उसको खत्म कर दिया, तो वहां आंदोलन शुरू हो गया, राष्ट्रपति के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गए, क्योंकि राष्ट्रपति का झुकाव रशिया की तरफ था, उनको अपना पद छोड़ना पड़ा। तो वहां से फिर शुरुआत हो गई, ऐसी स्थिति में रशिया ने फिर यूक्रेन पर आक्रमण भी कर दिया, फिर आगे आप यूं कह लीजिए कि संघर्ष कोल्ड वार चलता रहा। और अब जबकि यूक्रेन ने बिल्कुल साफ तौर पर कह दिया कि हम नाटो के सदस्य बनेंगे, तब संकट बहुत बढ़ गया। संकट इसलिए बढ़ा कि रशिया को लग रहा है कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो गया तो जो नाटो की सेना है वो तो बकायदे उसकी सीमा पर आ जाएगी, और वहां से अगर कोई मिसाइल छोड़ी जाए तो बकायदे वो 5 मिनट में मास्को पहुंच जाएगी, तो उसको अपनी सुरक्षा पर खतरा महसूस हो रहा है। तो रशिया नहीं चाह रहा है कि जो यूक्रेन है वह नाटो संगठन का सदस्य बने, और जो यूरोप के राष्ट्र हैं जिसमें अमेरिका भी शामिल है वो ये चाह रहे हैं कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने, तो वो यूक्रेन को हर तरह से सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं, मिलिट्री सुविधाएं। और हालत अब ये हो गई है कि बिल्कुल ये नाटो के जो संगठन के जो राष्ट्र हैं और उधर जो रूस हैं, एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए हैं। रशिया अपनी सेना यूक्रेन के आसपास भेज रहा है मुकाबला करने के लिए। कुल मिलाकर के ये तनाव का कारण है दोस्तों, और मुझे लगता है कि यह जान लेने के बाद अब यूक्रेन के संकट के बारे में जो भी न्यूज आप पढ़ेंगे शायद आपको समझने में काफी कुछ आसानी होगी। और यदि ऐसी बात नहीं है तो आप मुझे लिखेंगे, मैं आपके जो और भी डाउट्स होंगे इसको लेकर के वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपके दिमाग में स्पष्टता होनी चाहिए। तो दोस्तों आज के मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से 3 दोस्तों के नाम हैं, बिन्नी कुमारी सारण से, विशाल सिन्हा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, और रवि कुमार। आप सबका बहुत बहुत आभार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कल गणतंत्र दिवस है, परसों आप सबसे फिर मुलाकात होगी, तब और बातें करेंगे। तब तक के लिए आप सब मुझे अनुमति प्रदान करें, मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। नमस्कार।